विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण में 15वां श्लोक। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमोरजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्त्वशुद्ध्य विशुद्धिभ्याम् माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्या वशगस्त्वन्यस् तद्वैचित्र्याद् अनेकधा सः कारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् तमः प्रधानप्रकृतेः तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत् पवन तेजोऽम्बू भुवो भूतानि जज्ञिरे सत्त्वं सहि पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षिरसन ग्राणाख्यामुपजायते तैरन्तःकरणं सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्यान्निश्चयात्मिका। हाँ, भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। आत्मा सत है, आत्मा चित है, आत्मा आनंद रूप है। पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया था, आत्मा आनंद रूप है, इसका भान होता है कि नहीं। अनुभव होता है कि नहीं, भान का मतलब अनुभव। आत्मा आनंद रूप है, परम आनंद रूप है, इसका यदि अनुभव नहीं होता है तो ये कहना बेकार है कि आत्मा आनंद रूप है। जिसका अनुभव नहीं होता है उसका वर्णन करना बेकार है। बंध्या के पुत्र के बारे में उसकी प्रशंसा के लिए बड़ा भारी काव्य की रचना कर लो। किसकी? बंध्या के पुत्र की प्रशंसा के लिए काव्य की रचना कर लो। बंध्या का पुत्र बड़ा दयालु है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा परोपकारी है, बड़ा धनी है, बड़ा विद्वान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा जो वंद्य का पुत्र का अनुभव होता है कि नहीं, वंद्य का पुत्र का अनुभव होता है? और जिसका अनुभव ही नहीं हो रहा है तो उसके बारे में काव्य की रचना करने की क्या जरूरत है? आत्मा आनंद स्वरूप है ये अनुभव होता हो तब तो आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आनंद रूप है, अनुभव नहीं आता है तो कहना बेकार है। आत्मा के परमानंदता का सभी को अनुभव होता है, अनुभव होता है, अनुभव में आता है। यदि ऐसा कहते हो फिर ये संसार के क्षुद्र विषयों में किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी परमानंदता का अनुभव जिसको हुआ है वह क्षुद्र विषयों के प्रति आसक्त होगा, प्रवृत्त होगा? उदाहरण, जिसने अमृत पान कर लिया है वह व्यक्ति बिस्लरी के पानी पिएगा कि नहीं है? पिएगा कि नहीं बोलो ना, खरीदने के जाएगा कि नहीं बिस्लरी बोतल? अमृत पान किया हुआ है वो बिस्लरी का पानी क्यों पिएगा? इसी तरह जिसको अपने परमानंदता का अनुभव हो चुका है वह आमरस खाने के लिए छटपटाएगा कि नहीं, रसपुरी खाने के लिए छटपटाएगा कि नहीं, श्रीखंड पूरी खाने के लिए छटपटाएगा कि नहीं? दूसरी बात, जिसको परमानंदता का अनुभव हो चुका है वह गर्मी से छटपटाएगा कि नहीं है? नहीं छटपटाएगा। और सर्दी से घबराएगा कि नहीं? ये किसी भी संसारिक क्षुद्र विषयों से वह राग भी नहीं करेगा, द्वेष भी नहीं करेगा, क्षुद्र विषय के प्रति उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। लेकिन संसार में 99.9% व्यक्ति सब विषयों में ही प्रवृत्त हो रहे हैं। भानेन परम प्रेम भानेन विशेष प्रिया। तब इसका उत्तर दिया, भान होता भी है, भान नहीं भी होता है। भान होता है, भान नहीं भी होता है। दोनों कैसे होंगे? प्रतिबंधक रहने के कारण सामान्य भान होते हुए भी विशेष भान नहीं हो पाता। समस्या प्रतिबंधक के चलते है। भान न होना विशेष भान न होना, भान होना सामान्य भान होता ही रहता है। अब ये समझ लो, वेदांत में बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, हजारों बार सुने हुए दृष्टांत है। भ्रांति के चलते, मंद अंधकार आदि के चलते सामने यदि रस्सी पड़ी हुई हो, व्यक्ति को उस रस्सी का भान होता है कि नहीं, भान होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों है। सामान्य का भान होता है माने इदम का भान होता है, यह समझे कि नहीं, सामने यह इदम यह इसका भान होना सामान्य भान है और रस्सी ये भान न होना विशेष अभान है। दो वाक्य प्रयोग होता है कि नहीं, यह रस्सी है, हम जिस समय विशेष जानते हैं, जिस समय हम विशेष जानते हैं उस समय ये दो चीज का ज्ञान हमको होता है, एक यह सत्ता का ज्ञान होता है, दूसरा चीज रस्सी विशेष का ज्ञान होता है। यह सामान्य इसलिए है कि हर वस्तु में यह का प्रयोग होगा, होगा कि नहीं बोलो है? हर वस्तु में यह का प्रयोग होगा, पहले यह का ज्ञान हुए बिना विशेष का ज्ञान नहीं होगा, पहले सामान्य का ज्ञान हुए बिना विशेष का ज्ञान नहीं होगा। जिस समय रस्सी को रस्सी के ही रूप में जानना होगा उस समय भी यह रस्सी इस रूप से जानोगे, जिस समय रस्सी को सर्प के रूप में जानना होगा तो उस समय भी यह सर्प है। तो भ्रांति कहां पर है? यह पर भ्रांति नहीं है, यह पर भ्रांति नहीं है, यह पर संदेह नहीं है। संदेह कहां पर है? विशेष पर है। तुलसीदास जी को सर्प में रस्सी देखी, तुम्हें रस्सी में सर्प दिखता है। तुलसीदास जी को भी यही हुआ कि यह रस्सी ये देख लो, और तुम्हें भी यही हुआ है कि यह सर्प ये देख लो। तो यह के बारे में तो किसी को भी शंका नहीं, किसी को भी भ्रम नहीं हो रहा है, माने सामान्य यह 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 यह। तो संसार में जब भी किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो दो ज्ञान होता है, पहले सामान्य का ज्ञान होगा, बाद में विशेष का ज्ञान होगा। जिस समय ज्ञान नहीं होता है उस समय भी सामान्य का ज्ञान तो होता ही रहता है, वो ध्यान देना। जिस समय ज्ञान नहीं रहता, पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता, उस समय भी सामान्य का ज्ञान रहता है। जिस व्यक्ति को तुम पहचानते नहीं हो, समझे कि नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिस व्यक्ति को तुम पहचानते नहीं हो वो व्यक्ति को यदि तुमने देखा तब उस व्यक्ति को पहचानने वाले से तुम क्या पूछोगे? यह कौन है। इसका मतलब उस जिसको तुम नहीं जान रहे हो उसको यह अंश को तो जान रहे हो ना, सामान्य को तो जान रहे हो, यह तो तुम जान ही रहे हो इसलिए तो यह। तो किसको नहीं जाना तुमने? विशेष को नहीं जाना, इसलिए विशेष के बारे में पूछा। सामान्य के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, सामान्य तो ज्ञात हो ही रहा है। कोई भी नया वस्तु तुम्हारे सामने आवे तो तुम तुरंत जिज्ञासा कर बैठोगे कि यह क्या है। यह तो तुमने जान ली, सामान्य को तो तुमने जान ही लिया ना, सामान्य तो ज्ञात हो ही गया है। यह सामान्य के बारे में तुमको पूछने का है, यह क्या है ये विशेष के बारे में पूछ रहे हो। ये अज्ञान कहां रहता है? अज्ञान विशेष में रहता है और विशेष को ही ढकता है। विशेष में रहकर विशेष को ढकेगा, सामान्य को नहीं ढक सकता है। इसी तरह अभी मैं हूं, इस अंश को तो अज्ञान ने ढका नहीं है। ये तो तुम सबको हम सबको ज्ञात है कि नहीं मैं, इसके बारे में तो कोई समस्या नहीं है। मैं हूं, समस्या कहां है? मेरे के मैं के विशेष अंश को हम नहीं जान रहे हैं। मेरा जो विशेष अंश है सत चित आनंदपना, क्या यूं कहो मेरे विशेष कुटस्थपना, मेरे विशेष ब्रह्मपना का मुझे अज्ञात है। अज्ञात है कि नहीं? मैं हूं ये ज्ञात है, ब्रह्म हूं ये अज्ञात है। तो भान भी हो रहा है, भान नहीं भी हो रहा है। तो तुम्हारे ब्रह्म अंश को ढका किसने? मैं अंशों को तो ढक नहीं रहा है, तुम्हारे ब्रह्म अंशों को ढक रहा है। मैं अंशों को तो नहीं ढक रहा है, कुटस्थ अंशों को ढक रहा है। और उस प्रतिबंधक ने क्या किया? कुटस्थों को ढककर जीव को खड़ा किया। प्रतिबंधक का तो यही ना लक्षण है। पहले प्रतिबंधक का लक्षण क्या है? तेरहवें श्लोक में प्रतिबंधक का लक्षण बताया है। प्रतिबंधो, प्रतिबंध क्या है? अस्ति भाति इति व्यवहारहार वस्तुनि, है दिख रहा है। व्यवहार के लिए पदार्थों का होना जरूरी, व्यवहार के लिए पदार्थ का ज्ञात होना जरूरी। अस्तित्व और ज्ञान, अस्ति और भाति, सत और चित, समझे कि नहीं? अस्तित्व सत है और भाति चित है। पदार्थ का होना सत है, पदार्थ का जाना जाना चित है। अस्ति और भाति, ये सत और चित के बिना कोई व्यवहार होगा नहीं। प्रतिबंधक क्या करता है? तम निरस्य, अपने अधिष्ठान के दोनों भाव का निरस्य माने आवरण करके ढक के फिर वो क्रम से दो चीज को उत्पन्न करता है। अस्ति के जगह नास्ति भाव को विरुद्धस्य उत्पद्यते, तम निरस्य तस्य विरुद्धस्य उत्पाद्यते, तस्य उत्पादनम उच्यते। अस्ति सत्ता का आवरण करके सत्ता में सत्ता के विरोध को उत्पन्न करता है। सत्ता का विपरीत क्या है? होने का विपरीत क्या है? न होना। न होने वाले भाव को खड़ा कर देता है। है के भाव की जगह नहीं के भाव को खड़ा कर देता है और भांति के जगह न भांति खड़ा कर देता है। चित्त की जगह ज्ञात के जगह अज्ञात भाव को खड़ा कर देता है। इसका नाम है प्रतिबंध। अब दृष्टांत क्या था? अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्द। कोई अभिभावक अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़कर आने के बाद कुछ दिन के बाद यह जानना चाह रहा है कि मेरा बेटा गुरुकुल में वेद पढ़ रहा है कि नहीं, मैं आज पता लगाकर जानकर आऊं। इसलिए पता लगाने के लिए गया है, अंदर जा नहीं पा रहा है क्योंकि रोक दिया गया है नियम के अनुसार। गुरुकुल में जब विद्यार्थियों का अध्ययन का काम चल रहा हो वहां बाहर के आदमी कोई प्रवेश न करे, नियम बना दिया गया था, इसलिए अंदर तो जा नहीं पाया। पढ़ रहे थे सभी। चौकीदार ने कहा कि सुनते नहीं हो, सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस समय आवाज आ रही है अंदर से जोर जोर से, गणा अनंत गणपति गुं, सुन रहे हो? बोले हां सुन रहा हूं। तुम अपने बच्चे की आवाज को पहचानते हो कि नहीं? पहचानता हूं। तो पहचानो, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है। वो कहां लगा रहा है? आवाज सुन भी रहा है, ये भान हो रहा है यही मेरे बेटे का आवाज है, ये पहचान नहीं रहा है, आवान हो रहा है। भान और आवान दोनों एक ही साथ हुआ। दृष्टांत तुमको समझ में आ गई ना? तो इसी तरह यहां क्या हो रहा है? मैं हूं ये भान हो रहा है, सभी को हो रहा है। इसलिए सत्ता का भी भान हो रहा है, भान भी ज्ञान चित्ता का भी भान हो रहा है। प्रतिबंधक क्या कर रहा है कि आनंद अंश को ढक रहा है। तो सामान्य अंश को ढक नहीं सकता। प्रतिबंधक सामान्य अंश को ढक नहीं सकता, विशेष अंश को ढक रहा है। तो प्रतिबंधक क्या है? यह दृष्टांत में प्रतिबंधक क्या है? दृष्टांत में समान सह अध्ययन ये प्रतिबंधक बन गया था अपने बेटे के आवाज को पहचान न पाने में, सह अध्ययन प्रतिबंधक बना था। बाद में जब गुरु ने एक एक को अलग अलग अभ्यास करने के लिए कहा तो सह अध्ययन प्रतिबंधक हट गया। तो उसका बेटा जब पढ़ने लगा तो ये मेरा बेटा पढ़ रहा है, आवाज आ गई है, हां हां अब पहचान लिया मेरा बेटा पढ़ रहा है। तो देख लो प्रतिबंधक हट गया तो भान हो गया, विशेष भान हो गया। इधर क्या? इह दृष्टांत में क्या है, अनादि अविद्यैव, अनादि अविद्या ही व्यामोहिक निबंधनम, सभी प्रतिबंधकों का कारण है। अब प्रतिबंधक को अनादि अविद्या क्या है, वो अनादि अविद्या किस तरह प्रतिबंधक बनकर सामान्य भान और विशेष आभान करती है, कराती है, ज्ञात होकर भी अज्ञात कराती है, प्रतिबंधक किस तरह, उसके अब यहां व्याख्या करने जा रहे हैं। ये वेदांत का एकदम मूल विषय है। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमोरजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर् द्विविधा च सा। पहला वस्तु तो अधिष्ठान चाहिए, मूल वस्तु तो अधिष्ठान है, आधार है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान क्या है तो चित आनंदमय ब्रह्म। सत का अध्यार कर लेना, सत को यह उच्चारण नहीं किया है लेकिन उसका अध्यार कर लेना। सत चित आनंद मय, मय माने प्राचुर्य। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में मयत प्रत्यय दो अर्थ में प्रयोग होता है। एक तो विकार अर्थ में मयत प्रत्यय का प्रयोग होता है, दूसरा प्राचुर्य अर्थ में मयत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे शरीर कैसा है, अन्नमय है, इसका मतलब यहां अन्न ज्यादा है ऐसा अर्थ नहीं समझ लेना, यहां विकार अर्थ है, अन्न का विकार है, शरीर अन्न का बना हुआ स्वरूप है कि अन्न का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, विकार, विकार माने बदला हुआ। संस्कृत भाषा में विकार का अर्थ बिगड़ा नहीं समझ लेना, विकार का अर्थ बदला हुआ। अन्न बदलकर शरीर बना, ये बात तो आपको समझ में आई कि नहीं। इसलिए शरीर को अन्नमय कोष बोलते हैं कि नहीं, ये स्थूल शरीर को क्या बोलते हैं, अन्नमय कोष। यहां मयट प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, अन्न के विकार अर्थ में, अन्न बदलकर शरीर बना। अब आभूषण किमय, सुवर्णमय, गहना किस रूप का है, सुवर्णमय है, तो वहां सोना बदलकर आभूषण बना यह अर्थ नहीं है, सोना बदला ही नहीं है, सोना बदला नहीं है, इसलिए विकार अर्थ में वहां मयड़ प्रत्यय नहीं है, प्राचुर्य अर्थ सोने के अलावा कुछ भी नहीं है, यह सोना ही सोना है आभूषण। आभूषण किमय, सुवर्णमय, यानी सोना ही सोना है, सोना ही आभूषण बना है, सोने के अलावा आभूषण का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो यहां भी मय प्रत्यय प्रयोग हुआ है, चिदानंदमय। किस अर्थ में यह मय प्रत्यय है, प्राचुर्य अर्थ में, सन्मय चिन्मय आनंदमय। ब्रह्म में सत के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, ब्रह्म में चित के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, ब्रह्म में आनंद के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। ये प्राचुर्य अर्थ में मैट पड़ते ब्रह्म चिदानंदमय ब्रह्म। अब ध्यान देना, आधार है चिदानंदमय ब्रह्म, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मूल आधार है। उसको आधार बनाकर माया, वेदांत ने उसको माया कहा या विद्यारण्य मुनि जी ने उसको प्रकृति कहा, सांख्यवादी उसको प्रधान कहते हैं, वह अचानक उसको सच्चिदानंदमय ब्रह्म को आधार बनाकर माया अस्तित्व में आ गई। आप इतने ही समझ लो बस, कहां से आई पूछोगे तो उसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्यों आई पूछोगे तो उसका उत्तर किसी के पास नहीं, आ गई इतना मान लो बस। जैसे ठंडियों में आकाश स्वच्छ होता है तो किस कलर का दिखता है, नीला दिखता है। आकाश नीला तो किसी हालत में नहीं है, आकाश में नीला रंग तो किसी हालत में नहीं है, है ही नहीं। कोई वैज्ञानिक भी उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा आकाश में नीला कलर, तुम भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, वैज्ञानिक भी सिद्ध नहीं कर पाएगा, कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी सिद्ध प्रूफ नहीं कर पाएगा कि आकाश में ब्लू कलर है, सिद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़े से बड़े वैज्ञानिक को आकाश में ब्लू कलर दिखता है कि नहीं है? अब उससे पूछो कि ये जो ब्लू कलर आकाश में है वो कहां से आया, क्या बताएंगे, कहां से आया? आकाश का अपना स्वरूप है ब्लू कलर है? अब क्या ब्लू कलर आकाश में है? है ही नहीं, फिर भी दिख रहा है कि नहीं। ठीक, माया के बारे में आप यही समझ लेना तो समझ में आ जाएगा। माया माने क्या है? ब्लू कलर, आकाश के ब्लू कलर, धरती का ब्लू कलर नहीं है वो, समझ लेना। धरती में जो ब्लू कलर है वो माया नहीं, समझ लेना। आकाश के जो ब्लू पना है, नीला पना है, वो माया है। आकाश में नहीं लेकिन आकाश में ही दिखती है, आकाश में नहीं लेकिन दिखती कहां है, आकाश में ही दिखता है। इसी तरह ब्रह्म में नहीं है माया लेकिन माया ब्रह्म में ही सिद्ध होता है। ब्रह्म में नहीं है लेकिन माया सिद्ध कहां होता है, होती है ब्रह्म में ही सिद्ध होती है। जहां नहीं है वहीं सिद्ध होना, जहां नहीं है वहीं सिद्ध होना किसका काम है, माया का काम। ये माया का लक्षण यहां बता रहे हैं, यही प्रतिबंधक है। तमो रज सत्व गुणा त्रिविधा प्रकृति, तमो गुण से युक्त है, रजोगुण से युक्त है और सत्व गुण से युक्त है, तीन गुणों की साम्यावस्था है प्रकृति माया प्रधान। इस प्रसंग अनुसार प्रासंगिक नाम क्या है उसका? प्रतिबंध। जिसका प्रसंग चल रहा है यहां प्रतिबंधक का, प्रतिबंधक के चलते भान होने पर भी भान नहीं हो पाता, तो प्रतिबंधक क्या है? माया है, यानी वही प्रतिबंधक है। प्रतिबिंब समन्विता, ब्रह्म का प्रतिबिंब से युक्त होकर अस्तित्व में आती है कौन? माया। समझे कि नहीं? प्रतिबिंब समन्वित, इस शब्द पर आप ध्यान देना। माया में यह क्षमता है कि ब्रह्म को तो छू नहीं सकती है, ब्रह्म को छुए बिना ब्रह्म के प्रतिबिंब को ग्रहण करती है। जैसे मिरर की विशेषता क्या है? तुमको मिरर छूता नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रतिबिंब को ग्रहण करता है कि नहीं? तुमको छुए बिना, तुमसे टच हुए बिना मिरर तुम्हारे रिफ्लेक्शन को, तुम्हारे प्रतिबिंब को ग्रहण करता है कि नहीं? मिरर की एक क्षमता है वो, तो माया की वो क्षमता क्यों नहीं है? ब्रह्म को छुए बिना माया क्या करती है? ब्रह्म के प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, ब्रह्म के अस्तित्व को, प्रतिबिंब माने ब्रह्म के अस्तित्व को ग्रहण करती है, और ब्रह्म के अस्तित्व को ग्रहण करके अपने आप खुद अस्तित्व वाली सिद्ध हो जाती है कौन? माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं, मां ब्रह्म को छुए बिना ब्रह्म के अस्तित्व को ग्रहण करके, प्रतिबिंब को ग्रहण करके और अपने आप अस्तित्व वाली सिद्ध हो जाती है। इस श्लोक का ये अर्थ है भाई। अब आप लोग वेदांत कितना समझते हो, और समझना हो तो वेदांत यही है समझने के लिए, बाकी दुनिया तो बहुत कुछ है समझने के लिए, वेदांत तो समझने के लिए ही है, दुनिया तो बाकी बहुत कुछ है। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रज सत्व गुणा प्रकृति, ये है प्रतिबंध का स्वरूप। सा प्रकृति द्विविधा, अब ये सिस्टम प्रक्रिया शुरू हो रहा है। जगत कैसे खड़ा हुआ, ब्रह्म में जगत कैसे खड़ा हुआ, ये प्रक्रिया शुरू हो रही है मूल। ये आप लोगों को ये समझना जरूरी है, ब्रह्म में जगत कैसे खड़ा हुआ। जगत दिख रहा है, ब्रह्म क्यों नहीं दिख रहा है? देख लो, ब्रह्म न दिखने में कारण, जैसे आकाश की नीलिमा कहां है? आकाश में है। नीलिमा दिख रहा है, आकाश नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आकाश? बोलो, आकाश दिख रहा है? अब आकाश को देखो कहोगे तो क्या देखोगे? आकाश देखोगे कि नीलिमा देखोगे? और नीलिमा को देखकर ही तुम क्या कहते हो कि आकाश दिखाई पड़ा? और मुझे लगता है बादलों के चलते वो नीलिमा नहीं दिखा तो तुम क्या कहते हो? आज बादल आ गए कि आकाश दिख ही नहीं रहा है, कहने लगते हो कि नहीं? बोलो, बादल ऐसा आ गया कि आकाश दिख ही नहीं रहा है। आकाश नहीं दिख रहा है कि नीलिमा नहीं दिख रहा है? और यदि नीलिमा दिखाई पड़ता होता तो तुम ये शब्द कहते कि आज आकाश नहीं दिख रहा है, जबकि नीलिमा है नहीं। आकाश के अस्तित्व में रहकर आकाश के मैं आकाश के स्वरूप को ढककर अपने स्वरूप को दिखा रहा है। कौन? नीलिमा, जो है ही नहीं। इसी तरह ब्रह्म में आश्रित होकर ब्रह्म के स्वरूप को ढककर, चिदानंदमय ब्रह्म के स्वरूप को ढककर अपना अस्तित्व सिद्ध करके माया दिख रही है। माया दिख रही का मतलब जगत दिख रहा है, ब्रह्म नहीं दिख रहा है, जबकि जगत है ही नहीं। ये ले वेदांत का फिलॉसफी समझ में आई कि नहीं? वेदांत सिद्धांत समझ में आया कि नहीं? जबकि जगत है ही नहीं, ब्रह्म के अलावा जगत कुछ भी नहीं, लेकिन जगत दिख रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं है कह रहे हो? किस तरह से? ठीक तरह, जो तुम नीला देख रहे हो आकाश में, आकाश में नीला नहीं है। वो तुमको समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है? आकाश में नीला है ही नहीं, दिख रहा है, है नहीं, ये समझ में आ रहा है तो जगत दिख रहा है, ब्रह्म में जगत दिख रहा है, जगत है नहीं, ब्रह्म में दिख रहा है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रज सत्वगुणा प्रकृतिर द्विविधा च सा। कई बार मिरर जिस समय हम देखते हैं तो मिरर क्या करता है? हमारे प्रतिबिंब को ग्रहण करके बैठा है। और जिस समय हम मिरर देखने जाते हैं, सच में मिरर देखते हैं कि प्रतिबिंब को देखते हैं? मिरर तो कोई भी देखता नहीं है। मिरर के आगे खड़े होकर आप मिरर देखते हो कि प्रतिबिंब देखते हो? देखो इसी तरह ये प्रतिबंधक का यही तो जादू है, यही तो खेल है, यही तो मैजिक है। अब एक प्रतिबंध में तीन चीज, चार चीज है, ये समझ लेना। प्रतिबंधक माने माया, माया में चार चीज है, ये समझ लेना। एक तो खुद माया को सिद्ध होने के लिए ब्रह्म का प्रतिबिंब को, छाया को लेना पड़ रहा है और उसके छाया को ले रही है, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में पड़ रहा है। दूसरा, तमोगुण माया में है, रजोगुण है और सत्वगुण है, तीनों गुण बराबर है। तमोगुण 100% है, रजोगुण 100% है, सत्वगुण 100%, तीन गुण की साम्यावस्था को माया कहते हैं। और तीन गुण की साम्यावस्था जो माया है उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब भी है, चार चीजें। इससे युक्त हुई हुई जो माया है वो दो प्रकार की है, द्विविधा च। ये च शब्द से एक और तीसरा प्रकार भी समझ लेना। च शब्द से क्या लेना, चार तीन प्रकार की है वो माया है। वो तीन प्रकार क्या है, इस 16वें श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। द्विविधा कहा था ना, च से तीसरा विधा भी कहा था, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व, ये दो भेद हैं। सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व, अविशुद्ध माने मलिन सत्व, उसी का दो नाम रख दिया विद्यारण्य मुनि जी ने, माया अविद्या। शुद्ध सत्व को माया कहकर कह दिया, मलिन सत्व को अविद्या इस नाम से कह दिया। शुद्ध सत्व शुद्ध विशुद्धिव्याम माया विद्ये चते मते, विद्वानों ने ऐसा माना है। माया बिंब वशीकृत्य ताम से सर्वज्ञ ईश्वर। अब ये बहुत ही बारीक से समझना बहुत जरूरी है। पहला वस्तु ब्रह्म है, दूसरी वस्तु माया। माया में तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बराबरी की अवस्था को माया कहते हैं, और उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। तो माया में चार चीज है, समझ गए कि नहीं। अब ये माया तीन प्रकार की है, विशुद्ध सत्व प्रकार की, मलिन सत्व प्रकार की और तमह प्रधान वाली माया। सत्व प्रधान वाली माया, मलिन सत्व प्रधान माया, तम प्रधान माया, तो माया का तीन भेद हो जाएंगे, समझे। तीन भेद होंगे तो तीनों में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा हुआ रहेगा। मिरर के चाहे हजार भेद कर लो, हजारों भेद में तुम्हारा रिफ्लेक्शन पड़ा रहेगा कि नहीं। तो इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, कल फिर आना, इसको बारीकी से हम समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।